कभी तो रोगी है, हर दर्द तेरा मिट जाएगा।
शांति। तो हम कौन है? राजयोगी है। तो राजयोगी के चेहरे पर भी कभी ये नहीं लगेगा कि ये बीमार है। एक बार मम्मा को कोई देखने आए तो बोला कि उसकी ब्राह्मणी को कहा, आप बीमार हैं? तो बोला, नहीं ये बीमार है। बोला, बीमार तो तुम लगते हो। तो देखो, तो बीमारी कहाँ लगती है? शरीर में या मन में? तो कोई कहता है कि भाई मेरा पेट दर्द है। तो बोला, भाई पेट दर्द है तो चेहरा क्यों खराब करते हो? पेट में दर्द है ना, तो चेहरा हमेशा ठीक रहे। एक बार दादी जी को पूछा, भाई आप कैसे हो? तो बोला, हाँ मैं तो ठीक हूँ। तो बोला कि आप, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आपके आपकी आपको क्या तकलीफ है आप बताते, मैं ठीक हूँ। तो बोला, तुम मेरे शरीर के लिए पूछते हो कि आपका शरीर कैसा है, तो मैं बताऊँ, मैं तो ठीक हूँ, आप मुझे कहने के आप कैसे हो, तो मैं तो ठीक हूँ। मेरे शरीर के लिए पूछो, आपको शरीर में क्या तकलीफ है। तो देखो, कितना अभ्यास शरीर का अलग होने का बीमारी में मदद करता है। तो जब तक ये हमारा अभ्यास नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं होती है, तो हमें दुख दर्द तकलीफ अनुभव होती है। लेकिन जब डिटैच, शरीर से डिटैच रहते हैं, शरीर से अलग होने का अनुभव होता है, तो ये बहुत सेवा करता है। जगदीश भाई को बीमारी के कारण पेट में पानी भर जाता था, तो पानी निकालना पड़ता था छेद करके। तो बोला, पेट बड़ा क्यों है मालूम है? कि गणेश की यादगार है। माना हर बीमारी में खुश रहना। बीमारी भी आती है तो क्या कहते हैं, वाह भाग्य, ओह सौभाग्य है, सौगात मिली, तोहफा मिला। क्यों? क्योंकि बाबा कहते थे कि बीमारी में आप पुरुषार्थ कर सकते हो। कभी कभी दादियों को कहते हैं, अच्छा हुआ बीमार हुई ना, अभी रेस्ट करने का टाइम मिला, नहीं तो रेस्ट नहीं करती हो ना, अभी तपस्या करो। तो हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा रहे, जितना हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा उतने ही हमारे अंदर लक्षण आएंगे। तो हमारा लक्ष्य है हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। ब्रह्मा बाबा को हमेशा क्या लक्ष्य क्या रहता था कि बच्चे मैं तो मिछनू बनूंगा, श्री कृष्ण छोटा बच्चा बनूंगा, विश्व का मालिक बनूंगा, प्रिंस बनूंगा। देखो जब बाबा को तकलीफ हुआ, मना ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि ब्लड देना पड़ेगा। तो बाबा ने क्या कहा, ये तो शिव बाबा का रथ है, ये पतित का ब्लड नहीं लेगा। तो फिर भी क्या करें, संदेश ही बाबा के पास गई। तो बाबा ने कहा बच्चे को बोलो ब्लड ले ले रहे, शिव बाबा ऊपर से पावन करेगा। मना कितना निश्चय बुद्धि, ये शिव बाबा का रथ है, भले शरीर छूट जाए लेकिन पतित का खून हमारे खून में नहीं आ रहे, ये शिव बाबा का रथ है। मना शिव बाबा का रथ वो भी है तो हमारा भी शिव बाबा का ही रथ है। बाबा ने क्या ने क्या कहा, ये शरीर अमानत है, शरीर को प्यार से संभालना है, इसको चाबुक नहीं मारना है। हम कौन सा चाबुक मारता है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो पतित है, ये तो पुराना शरीर है, इसे तो छूटे तो अच्छा है। नहीं, बाबा कहते हैं कि शरीर बहुत अमूल्य है, 84 जन्मों में यही समय है और यही पुरुषार्थ के लिए आपको मिला है। अभी इसी में ही थोड़े समय में और इसी शरीर में आपको पुरुषार्थ करके क्या बनेंगे। तो ये थोड़े समय को और ये अमूल्य समय को हमें कैसे यूज करना है, एक सेकंड भी गंवाना नहीं है। एक सेकंड गया तो बाबा क्या कहते हैं, एक साल का पुरुषार्थ गया, एक साल सत्युग का कम हो जाएगा। तो हमें कितना अटेंशन रखना है कि हमारा समय व्यर्थ न जाए। कहां कहां हमारा समय व्यर्थ जाता है, कौन से चिंतन हम करते हैं जो हमारा समय व्यर्थ जाता है। तो बाबा ने हमें सोमान दिए हैं, उस सोमान में हम स्थित रहे कि हम कौन है, विश्व कल्याणकारी है। हम कौन है, आधार मूर्त है। आधार हिला तो क्या होगा, बिल्डिंग रहेगी। तो हम सारे विश्व की आधार मूर्त है और उद्धार मूर्त है और उदाहरण मूर्त है। सारे विश्व के अंदर सैंपल देखना हो तो बाबा कहते हैं कहां देखो, तो एक एक हम कौन है, सैंपल है। एक बार क्या हुआ, कोई पार्टी आई यहां पर, तो उसको एक भाई ने समझाया दिखाया तो बहुत खुश हुए, बोला ये बाबा लगते हैं। बोला फिर उसने बोला कि हम बाबा से फिर आपको मिलेंगे। तो बोला आप इतने अच्छे हैं तो बाबा कितने अच्छे होंगे। देखो आपके अंदर ही सारे बाबा के गुण दिखाई दिए तो बाबा कितने अच्छे होंगे। तो हमारे जीवन से सबको प्रेरणा मिले। विश्व रतन दादा थे तो हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमारे जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले, हमारे जीवन से सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले, उमंग उत्साह बढ़े। जब हमारे जीवन में उमंग उत्साह खुशी होगी तभी दूसरों को वो हम प्रदान कर सकते हैं। तो बीमारी में हमें क्या करना चाहिए, बीमारी आती क्यों है? एक बार क्या हुआ, एक भाई ने बाबा को कहा, बाबा ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। बाबा बहुत प्यार से सुनते रहे, फिर बोला कि क्या हुआ, तो बोला परहेज नहीं रहती है। तो फिर बाबा ने उसको एक शब्द में ही बता दिया कि जिसको अपने शरीर का नॉलेज नहीं रहता था उसको साकार में क्या कहते थे मालूम है? बुद्धू कहते थे। तो अपने शरीर को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कितना देना है, कैसा आराम करना है, सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमें शुगर है और हम आइसक्रीम 2-3 खा ले तो क्या होगा? एक भाई को 2-3 आइसक्रीम खिला दिया तो वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचा, रास्ते में ही शरीर छोड़ दिया। तो कितना हमें, ये बाबा का शरीर है, ये अमानत है भाई, चीज आपकी है लेकिन पेट किसका है? पेट दूसरे का थोड़ी है, तो पेट तो हमारा है। तो हमें कितना खाना है, कहते हैं पानी ज्यादा पीना चाहिए और खाना कम खाना चाहिए। और भोजन भी क्या है, भोजन ब्रह्मा भोजन है, प्रसाद है। तो प्रसाद कितना लेना चाहिए, थोड़ा प्रसाद में कितने संतुष्ट हो जाते हैं। प्रसाद है क्या है, औषधि है। तो बाबा ने एक बार मधुन वालों को कहा कि आप भोजन नहीं करते हो, प्रसाद खाते हो, क्यों? क्योंकि भोग लगता है बाबा को। तो बाबा को भोग लगा है वो ब्रह्मा भोजन हो गया, प्रसाद हो गया। तो प्रसाद है वो औषधि का काम करते हैं। तो जितना आप बाबा की याद में भोजन करेंगे, बाबा की याद में खाएंगे, तो आप चबा के खाएंगे, धीरे से खाएंगे और आपको कोई भी अनासक्त भाव से खाएंगे, आसक्ति नहीं रहेगी कि भाई आज ये जो मिला है फिर पता नहीं कल बनेगा कि नहीं बनेगा, आज खा लो डबल खा लो। लेकिन क्या होगा, वो तकलीफ कर देगा, सवेरे अमृत वेला नहीं करने देगा। तो हमें अमृत वेले का भी ध्यान रखना है कि भाई ऐसा नहीं भोजन हुए जो अमृत वेला हमारा मिस हो जाए। जगदीश भाई ने लगभग 40 साल तक शाम का भोजन नहीं किया, क्यों? कहते थे अमृत वेले वो बाबा उसको बुलाते थे, 2 बजे बाबा कहते थे पहरे वाले को, देखो जगदीश की लाइट जल रही है। तो बोला 2 बजे मैं स्नान पानी करके तैयार होके बैठता था, बाबा बुलाए और मैं जाऊं। देखो कितने बजे वो सोते होंगे, कितने बजे उठते होंगे और कितने बजे स्नान पानी करते होंगे। एक लगन थी कि बाबा बुलाए और मैं तैयार रहूं। तो बाबा तो हमको बुलाते हैं, वतन में बुलाते हैं, तो हम हमेशा एवर रेडी रहे कि जब बाबा बुलाए और हम बाबा के बुलाने से पहले हम पहुंच जाए, ऐसा एवर रेडी रहे। तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ये शरीर भगवान की अमानत है। कहते ना हम क्या कहते हैं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, हैं? सब कुछ हैं? सब कुछ तेरा है। तो तेरे में ख्यानत नहीं डालनी चाहिए, उसमें हमें उसको डिस्टर्ब हम किस बात से करते हैं। जब हमारी आसक्ति जाती है, हम उसे ध्यान नहीं रखते हैं, परहेज नहीं करते हैं, तो बीमार होते हैं। हम पेशेंट की सेवा करते हैं तो मालूम पड़ता है ये बीमार क्यों पड़ता है, घड़ी घड़ी परहेज नहीं करते, दवाई नहीं खाते हैं, आराम नहीं करते हैं। तो फिर वो भी घड़ी घड़ी बीमार होते। तो घड़ी घड़ी बीमार होना, ये संगम युग का टाइम हमें वेस्ट करना है। बीमारी में जितना आप बाबा को याद करना चाहिए, बाबा तो कहते हैं ये फुर्सत का टाइम है, लेकिन आपको एक तकलीफ हो रही और आप कहे मैं अशरीरी हो जाऊं, बिंदु हो जाऊं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करूं, वो खींचेगा ना, बीमारी खींचती है। तो हम ऐसा अभ्यास करें, ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा ध्यान रखें भी हम बीमारी में पड़े। बीमारी में बाबा याद रहे, किसी को पूछो भाई बीमारी में बाबा याद है? अभी एक माता जी है, वो बोल रहे बाबा याद रहता ही नहीं है, बीमारी है ये है ये। पांच साल हो गया, छह साल हो गया हॉस्पिटल में है, बाबा बुलाता ही नहीं, बाबा को कहो मुझे बुलाए। तो सेवा का स्थान बन जाए हमारी बीमारी। कभी एक बार एक भाई को लेके गया था हॉस्पिटल में, तो छोटा सा बीमार था, बीमारी था, छोटा सा ऑपरेशन था, तो वो चिल्लाने लगा, तो बोला तुम्हारे से तो ध्यानी दादी अच्छी है, कितना बड़ी बीमारी में भी कि वाह बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करते, तुम चिल्लाते हो जवान ना। तो माना देखो कैसे प्रभाव पड़ता है। जब दादी जी का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर देखने आए तो पूछा पेशेंट कहाँ गया, यहाँ तो सब खुशी में है, शांत है, कोई कंप्लेन नहीं है। तो बोला डॉक्टर कैसे हो पूछ रहे हैं। तो बोला कि हम राजयोग करते हैं, आप भी राजयोग। देखो कितना इम्प्रेस पड़ता है। तो हमारी बीमारी एक सेवा का साधन बन जाए, जहां भी हम रहे, जिसके साथ भी रहे, उसको तकलीफ न हो। जगदीश भाई हॉस्पिटल में थे तो हमको कहते थे जाओ दो घंटा चले जाओ, दो तीन घंटा बाहर जाओ, ऐसे दो घंटे के ऊपर अगर आधा घंटा ज्यादा हुआ तो पूछते थे भी कहाँ गए थे। तो मैं फिर पूछता था भाई क्या क्या बात थी, तो बोला भाई ये लोग आए थे, उसको देना था, ऐसे प्यार से, ऐसे कभी नहीं भाई डांट नहीं लगाते थे भाई आप इतना देर तक क्यों, दो घंटे बोले ढाई घंटा क्यों लगा दिया, ऐसे नहीं। माना कैसे एक एक मिनट का महत्व रहता है, समय का महत्व है। तो हमें अभ्यास जरूर करना चाहिए। कौन सा अभ्यास करना चाहिए? बाबा ने एक बार कहा था कि ये अशरीरीपन का अभ्यास टॉनिक का काम करता है। जैसे टॉनिक का इंजेक्शन लेते हैं तो कैसे शरीर में शक्ति आ जाती है, तो ये अशरीरीपन का अभ्यास शरीर में शक्ति देता है। तो पेशेंट में क्या रहना चाहिए? पेशेंस माना धैर्यता होनी चाहिए, धीरज। बाबा कहते हैं ना धीरज धर, मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएगी आए। तो बीमारी कोई हमेशा नहीं रहने वाली है। हम स्वस्थ थे, हम अपने सतयुग को याद करें कि हमारा शरीर कितना तंदुरुस्त था, कैसे सर्वगुण संपन्न थे, सोलह कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संपूर्ण अहिंसक थे। अभी हम श्याम बन गए, तो वहां उस समय हम सुंदर थे। तो सुंदर थे तो किसको देवता कहते थे। तो ये शरीर क्या है? मंदिर है, और आत्मा देवता है। तो देवताओं को हम क्या भोग लगाते हैं, इतना अच्छा भोग लगाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर को भी मंदिर समझ करके और आत्मा को देवता समझ करके उसे भी इसी तरह से भोग लगाना है। माना जो भी चीज खाए, जो भी चीज पिए, जो भी चीज स्वीकार करे, बाबा की याद में स्वीकार करें। बाबा की याद में जब हम स्वीकार करते हैं, बाबा की याद करके हम स्वीकार करते हैं, तो उसमें शक्ति बढ़ जाती है, एक विशेष बन जाता है चीज। तो हम ये याद रखें कि हम कौन हैं, पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, देव आत्मा बनने वाली आत्मा है। तो जो पुण्य आत्मा के जो कर्म हैं वो पुण्यशाली होते हैं। कहते हैं कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसको दूसरे जन्म में क्या मिलता है, तंदुरुस्त शरीर मिलता है, और कोई स्कूल कॉलेज खोलते हैं तो वो अच्छी पढ़ाई करते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ मिलता है। तो हमें अपने कर्मों को भी देखना है कि हम कैसे कर्म करते हैं। तो हमें आज हम ब्राह्मण बने हैं, 84वां जन्म है हमारा, तो हम पूरे चक्र लगाकर आए हैं। अभी हम पूरे चक्कर में फिर आने वाले हैं। तो इसी जन्म में हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हैं जो पूरे 84 जन्म में हम सुखी रहते। अभी देखो हमारा ये लास्ट जन्म भी कितना सुखी है। तो हम कितने महान पुण्य आत्मा रहे हैं जिससे हमारा अंतिम जन्म भी इतना सुखी है। तो अभी हमें ऐसे कर्म करने हैं जो हमारे कर्म से अनेकों को प्रेरणा मिले, सुख मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। जब मम्मा को एडमिट किया तो उस समय डॉक्टर ने पूछा इसकी कमाई क्या है, तो बोला कि डॉक्टर साहब, रमेश भाई ने बोला डॉक्टर साहब आप फिक्र नहीं करो हम बैठे हैं ना, तो बोले आपकी कमाई का हम नहीं पूछ रहे, पेशेंट की कमाई क्या है वो बताओ। तो बोला भाई पेशेंट की कमाई तो जीरो है, पेशेंट की कोई कमाई नहीं है। तो गवर्नमेंट में उस समय रूल होता था कि जो भी पेशेंट की कोई कमाई नहीं है उसका फ्री होता था। तो मम्मा को बोला किसमें एडमिट, किसमें रखना है भाई, फर्स्ट क्लास में रखना है। मम्मा का ऑपरेशन भी फ्री हुआ और रहने का भी सब फ्री हुआ। तो देखो सेवा बदी है। तो हम भी किसी के पास जाते हैं तो उसका डॉक्टर की सेवा करते हैं, नर्स की सेवा करते हैं। एक बार हम पेशेंट को ले गए तो डॉक्टर को ज्ञान दिया, सब नर्स को ज्ञान दिया, तो उसने सब ऑपरेशन भी फ्री कर दिया, रहने का सब फ्री कर दिया। मैं बोला डॉक्टर साहब ये क्यों सब फ्री किया, तो बोला हम समझते एक पेशेंट नहीं आया था। वरना इतनी भावना बढ़ जाती है। शांतामणि दादी थे, एक बार एक दादी के पास गए, दूसरा दादी थे, तो उसने बोला दादी आपने तो विजय पाली। तो बोला कि भाई हमारी परीक्षा कब होती है, हम कितने पानी में है, हम कितना पुरुषार्थ किया है कब पता चलता है। कोई भी परिस्थिति आती है तभी पता चलता है कि भाई हमने कितना पुरुषार्थ किया है, हमारी कितनी आत्मा में शक्ति भरी है, तब पता चलता है। तो बीमारी में हम अगर हलचल हो जाए और उसको महसूस करें तो हम विजय नहीं। तो बीमारी में भी हमें हमारे तपस्या का फल है कि हम अचल अडोल रह सकते हैं। तो ये जब बताया कि भाई हमें अपनी बीमारी में भी हमें एकदम शांत रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जितना शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, उतना ही हमें आत्मा में मना बाबा को याद करने का, पुरुषार्थ करने का और एक अवसर मिल जाता है। हम कंप्लेन ही करते रहेंगे तो फिर बाबा कहते हैं कंप्लेन कभी समाप्त नहीं होगी। कंप्लेन के बदले में क्या बनना है? कंप्लीट बनना है। कोई कंप्लेन नहीं, नो कंप्लेन। कोई पूछते क्या तकलीफ है, बस ठीक है, ओके ओके, ऐसा। तो कभी कोई बीमार होते थे तो उसको हम फ्रूट काट के देते थे, तो कहते थे भाई आप तो बहुत अच्छा फल काटते, हम तो कभी फल खाते ही नहीं है। देखो फल सूख जाता है, सड़ जाता है, लेकिन हम खाते नहीं। तो हमें भाई बाबा का ब्रह्मा भोजन है, माना कोई भी चीज मिलती है उसको हम वेस्ट क्यों करें? और फल है, सब्जियां हैं, वो हमें पहले स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन्स होते हैं। और जैसे कोई भारी चीज है उसमें इतने विटामिन नहीं होते, वो तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, हार्ट की तकलीफ कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, शुगर बढ़ा देगा। लेकिन हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे। जैसे कि सब्जियां है, फ्रूट्स है, अंकुरित है, और पानी। कई लोग तो सारे दिन में कहते हैं हम तो पानी पीते ही नहीं, तो हमारे शरीर में 75% पानी है, तो हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो उससे शरीर स्वच्छ रहता है। कहते हैं शरीर जब तक स्नान नहीं करते तो कैसे रहता है? तो ये शरीर भी, अंदर से भी सफाई कब रहेगा? जब पानी का हम प्रयोग करेंगे। तो पानी हमें पीना चाहिए और भोजन कम करना चाहिए, माना 4 रोटी खाते तो 2 रोटी खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ, पानी ज्यादा, सूप, जैसे लिक्विड चीज है, सूप है, वो दाल है, माना दाल भी कम, सब्जियां ज्यादा, हरी सब्जियां, जैसे मिर्ची मसाले वाला कम खाना चाहिए। जितना मिर्ची मसाला तला हुआ चीज का जितना त्याग करेंगे उतना ही आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। शरीर को चलाने का भी तरीका आना चाहिए, भाई शरीर को कैसे चलाना है। शरीर को चलाने का जिसको ढंग नहीं आता है वो बीमार पड़ते हैं। अगर शरीर को आप ध्यान रखेंगे तो वो आपका ध्यान रखेगा। कहते हैं साधन को, आप साधनों का आप ध्यान रखेंगे, साधनों को संभाल के रखेंगे तो साधन आपको मदद करेगा। साधन से आप सुविधा ले सकते हैं। अगर साधन ही खराब है, साधन को कभी आपने, तलवार को कभी आपने धार नहीं लगाया तो वो टाइम पे काम में आएगी? नहीं आएगी। जंग लगी हुई तलवार क्या काम में आएगी? तो ऐसे ही हमारा शरीर है, उसको हम तंदुरुस्त रखेंगे तो हमारा योग अच्छा लगेगा। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है तो हमें अपने शरीर का पूरा ही ध्यान रखना है। शरीर हमारा बीमार रहेगा तो हम योग नहीं कर सकते। शरीर हमारा कष्ट में रहेगा तो हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने पुरुषार्थ के लिए अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है। तो कोई टक्कर अगर भूल में भी किसी की लग जाता है तो वो सॉरी कहने के पहले हम सॉरी कर दे पहले, तो वो कहेंगे भाई देखो गलती तो हमारी हुई लेकिन हमारा हिसाब किताब चुक तो हो रहा है। अभी हम तो खड़े थे, पीछे से कोई बाइक वाले ने टक्कर मार दी तो फ्रैक्चर हो गया, तो क्या अभी उसकी गलती तो उसकी थी, माना ध्यान उसका नहीं था, फिर भी हमको डांटने लगा। तो भी वो हमारे साथ भाई था, वो कहते एक तो तुमने टक्कर लगाई और ऊपर से तुम उसको डांट रहा है। तो हमने हमको फिर हॉस्पिटल में लेके आए। तो पुरुषार्थ करने का समय हमें अभी है, तो हमें एकांत का अनुभव जब बीमारी के टाइम मिलता है तो हमें उसका पूरा पूरा लाभ लेना है। हे भगवान, हे ईश्वर कहते हैं तो, लेकिन वाह बाबा वाह करना चाहिए। बीमारी में जब मैं देखा कि जगदीश भाई को तकलीफ होता था तो कहते थे मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सिकलेदा बाबा, मुख से बोलते रहते थे। माना जब आपको शरीर से नहीं बोला जाता है तो माना मन से नहीं बोला जाता, मुख से भी बोलो बाबा की महिमा करो। माना कैसे परिवर्तन करना है अपनी बीमारी को। किसी को एक बार कोई आए तो हूँ कर रहे थे भाई साहब, तो बोला कि आपको लगा कि हूँ माना आपको बहुत तकलीफ होगा। तकलीफ हूँ का अर्थ मालूम है आपको? हूँ का अर्थ क्या होता है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजय रतन हूँ, ये मैं पुरुषार्थ कर रहा। आपको लगा होगा भाई साहब को तकलीफ होगी। तकलीफ कोई नहीं है भाई, ना तकलीफ को भी कैसे है मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ के रूप में परिवर्तन कर दिया। तो ये हमारा पुरुषार्थ रहना चाहिए, क्योंकि बाबा के साथ हमारा सर्व संबंध रहे। बीमारी में हम क्या समझे बाबा कौन है? हमारे सुप्रीम सर्जन है। बहुतों का अनुभव है कि कैसे बाबा स्वयं आकर के ऑपरेशन करता है। जो डॉक्टर को समझ में नहीं आता है बाबा टच करता है कि इसको ये दवाई दो, इसको ये दवाई दो, इसको ऐसा इंजेक्शन दो। एक बार किसी बहन का अंदर से ब्लड बहुत जा रहा था तो दीदी ने बोला कि जाओ बाबा को पूछ के आओ। तो बाबा ने कहा उसका एक नस कट गया है, अगर वो डॉक्टर बांध देवे तो ब्लड बंद हो जाएगा। तो डॉक्टर को जब बोला तो वो बोला कि वो डॉक्टर कहाँ है, उसके पास हमें ले चलो, आपके बाबा कहाँ है? हमको पता नहीं चला, उसको पता चला। देखो कैसे सेवा हो जाती है। फिर जब उसका नस बांध दिया तो ब्लड बंद हो गया और वो बहन ठीक हो गई। तो बाबा कहते हैं कि हम बीमारी में कहते हैं भाई दवाई क्या खाना है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। बाबा कहते थे ड्राई फ्रूट समझो, ड्राई फ्रूट कोई हरा कोई पीला कोई लाल होता है ना, तो ये दवाई भी ऐसी होती है ना, तो उसको ये ड्राई फ्रूट समझ के खाना है और अपनी बीमारी को ठीक करना है। उदास होने का कारण है कि बाबा को हम साथी तो समझते हैं लेकिन उस समय भूल जाता है। तो बाबा हमारे साथ कंबाइन है, इसलिए कहते हैं कि भाई थोड़ा मन से बाबा की याद नहीं आती तो मुख से भी बाबा का वर्णन करो और बाबा के गीत सुनो, कोई क्लासेस सुनो। हाँ बाबा के पीस ऑफ माइंड चैनल है वो देखो। तो उदास तो होने का कारण क्या है कि भाई बीमारी में तो तकलीफ तो होती है, लेकिन तकलीफ को भी हमें ये समझना है कि भाई अभी ये हिसाब किताब चुक्त हो रहा है। हिसाब किताब के समय तो थोड़ा लगता है भाई ये भी ये तकलीफ है, ये कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, कोई आवाज भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उस समय हमें पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करने का, बाबा के साथ का अनुभव करने का, और अपने निश्चय रखना है कि पक्का दृढ़ संकल्प रहे कि हमें अभी सफलता पानी है, हमें अभी ठीक होना है, और अभी हमें नया शरीर मिलेगा। नया शरीर मिलेगा, कितना तंदुरुस्त शरीर होगा। पहले हमने भी तंदुरुस्त शरीर हमारा था, फिर हम तंदुरुस्त बनेंगे, ये हमें लक्ष्य रहे। और हिसाब किताब लंबा होता है तो बाबा कहते हैं कि भाई कोई हिसाब किताब मतलब कई जन्मों के हिसाब किताब होता है, तो उसको चुक्त करने के लिए कोई टाइम भी लगता है। बाबा कहते हैं कोई एकदम पत्थर बुद्धि है तो उसको पिघलने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे भी जैसे हमारा हिसाब किताब लंबा है तो उसको भी हमें धीरज रखना है, और धीरज और शांति से और खुशी खुशी से उसको चुक्त करना है। दर्द होता है तो उसको हमें सोमान में परिवर्तन करना है कि मैं कौन हूं, मैं विजय रतन हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं फरिश्ता हूं। कई बार देखा हमने कितना तकलीफ होती है लेकिन चेहरे से तकलीफ का महसूस नहीं करते, अंदर में बहुत तकलीफ है लेकिन चेहरे से नहीं दिखाई देता है भाई उसको तकलीफ है। ये बहुत बड़ी सेवा होती है क्योंकि हमारे चेहरे से तकलीफ महसूस नहीं हो। हिसाब किताब तो हमारा है, वो तो हमें चुक्त करना है, वो दूसरे को थोड़ी करना है, हमें ही करना है। हमारा जो हमें हिसाब बनाया है तो हमें ही इसको चुक्त करना है। तो जब हमने हिसाब बनाया तो खुशी से बनाया तो फिर तो अभी उसको चुक्त भी कैसे करना है, खुशी से करना है। तो माना ये हमें याद रहे कि हमें हमारा हिसाब हमें ही चुक्त करना है, तो हमें इसमें उदास नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, और दूसरों को भी हमें नाराज नहीं करना है कि ये सेवा नहीं करता है, ये खाना अच्छा नहीं खिलाता है, ये ध्यान नहीं रखता है, टाइम पर ये नहीं मिलता है, ऐसा नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, क्योंकि यही हमारी अवस्था का प्रमाण है। अगर हम उस समय हम चिड़चिड़ापन करते हैं, उस समय हम आवेश में आ जाते हैं, उस समय हम नाराज हो जाते हैं, तो कहते हैं कि ये कैसा योगी है जो उसको चाय नहीं मिली तो उदास हो गया, उसको पापड़ नहीं मिला तो बस उसको तो अभी बाबा ने तो कहते हैं कहा है कि तुमको खाना भी नहीं खाना है, उसके बोले तुम पापड़ मांग रहे हो, आचार मांग रहे हो। अगर हम उसमें आसक्ति रहेगी तो हमारा शरीर नहीं छूटेगा। एक भाई ने भोग में कहा कि मेरे को चाय पिलाओ, भोग में चाय मांगी उसने, पहले चाय पिलाओ फिर बात करूंगा, तो तो उसको भोग में जब चाय रखी तो फिर उसने बात किया। मतलब कैसे हमारा अंत समय सुहाना हुए, अंतिम समय हमें एक बाबा के सिवाय कोई भी चीज में आसक्ति न रहे। अंतमते सोगति, अंतिम समय कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो तो हमारी अंत सुहानी होगी। अगर अंत समय हमारी बहुत सारी इच्छाएं रहेगी तो फिर हमारी जो वो स्थिति नहीं बनेगी। बाबा कहते हैं अंत समय अगर तुम्हारा बाबा की याद में रहे, अभी देखो बाबा की बहू थी, बाबा की युगल माना यशोदा मैया, उसका ऑपरेशन में ले जा रहे थे तो उसको बोला अभी ठहर जाओ, निर्मल संता दादी को बोला तुम मेरे को योग में योग कराओ, बस योग करते करते शरीर छोड़ दिया। माना अपने शरीर को पर भी हमें विजय पाना है। शरीर के ऊपर विजय कब मिलेगा? जब हमारी बहुत समय का अभ्यास होगा, बहुत समय की प्रैक्टिस होगी, वो आपको शरीर पर विजय प्राप्त कराएगा। शरीर पर विजय कैसे प्राप्त? ऐसे ही होगा। विजय माना क्या है? सफलता मिलेगी, माना हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। माना अभी मौजों का युग है, लेकिन कौन सी मौज करना? अति इंद्रिय सुख की मौज करनी, ये नहीं कि खाने पीने की मौज करनी। खाने पीने में क्या है? शरीर को बाबा कहते क्या चाहिए? अभी हम कहाँ है? वनवाह में है, त्यागी जीवन है हमारा, तपस्वी जीवन है, और हमें कहेंगे भाई हमको तो पनीर चाहिए, अचार चाहिए, ये सब चीजें हम याद करते रहे। त्यागी जीवन है हमारा, तपस्वी जीवन है, अगर उसी में ही हम ये सब चीजों की आसक्ति रहेंगी तो आसक्ति कभी भी पूरी नहीं होती है, आसक्ति का कभी अंत नहीं है। तो हमारा जीवन है तपस्वी जीवन है, योगी जीवन है। तो योगी जीवन माना क्या है? मिला न मिला कुछ नहीं, मिले तो भी खुश, ना मिले तो ज्यादा खुश। क्यों? क्योंकि ना मिलने से और ही अच्छा है, चलो बाबा को योग करने का टाइम मिल गया, अभी उसमें थोड़ा टाइम और ही मिलेगा। तो जितना ही आपको कोई देवे तो भी खुश रहो, कोई न देवे तो ज्यादा खुश रहो। छीन लेगा तो और ही अच्छा है, उसका भाग्य में होगा तो उसको मिला, हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा। इसलिए कहते हैं हमारा जो भाग्य में होगा वो कोई छीन नहीं सकता है। तो हमें अपने जीवन में ये अभ्यास जरूर रखना है कि मुझे क्या, शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखना है, उसका हमें पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखो जगदीश भाई हमेशा ही ठंडे पानी से नहाते थे, दिल्ली में इतनी ठंडी होते भी ठंडे पानी से नहाते थे, कभी भी बीमार नहीं हुए। लास्ट में बस वो एक दो महीना ही बीमार हुए, लेकिन कैसे भाई इस शरीर को इस सेवा के लिए है, बाबा की सेवा थोड़ी होगी, नहीं तो हमें सेवा लेनी पड़ेगी। तो हमें किसी की अगर आप शरीर का पूरा ध्यान रखते रहेंगे तो फिर ये सब नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे भाई मुझे ये टाइम पे भोजन करना है, ये मेरा क्लास इस समय नहीं रखो, तो कैसे होगा? इस समय मैं भाषण नहीं करूंगा, इस समय मुझे तो आराम की जरूरत है, तो नहीं होगा भाई। जब भी सेवा हुए तो एवर रेडी, उस समय त्याग करना, भोजन का त्याग करना पड़े, आराम का त्याग करना पड़े, तो एवर रेडी रहना है। अगर आप टाइम पे सब खाना खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, तो सेवा कब करोगे? तो सबका त्याग करना पड़ेगा। तो हमारा अभी ये ऐशाराम का जीवन कब है? सतयुग में है, अभी ऐशाराम का समय नहीं है। अभी हम ऐशाराम करेंगे तो सतयुग में हमें भाषा ही नहीं मिलेगी। कई कहते हैं बाबा, कई संदेशी जब जाती थी तो कोई झाड़ू लगाती है ना, तो वो कहती वो तो रानी है और वो कोच पर बैठी है ना, वो तो दासी है। देखो माना वो ऐशाराम वाले लक्ष्मी नहीं बनेंगे। कहीं को बाबा को कहीं कहते थे बाबा ये तो कोई काम नहीं करते, ये तो सारा दिन आराम करते हैं, खाना पीते हैं। तो बाबा कहते ऐसा सस्ता नौकर तुम्हें कहाँ मिलेगा जो 84 जन्म तुम्हारी नौकरी करती रहेगी, सत्युग में तुम्हारी दास दासियों बनेगी। देखो तो हमें इस शरीर को अभी इतना नहीं संभालना है, इतना नहीं पुचकारना है कि भाई उसको कुछ नहीं हुए, कोई काम नहीं करना है, बस ये खाऊं वो खाऊं ये पीऊं ये सोऊं, ऐसा नहीं। बस त्यागी जीवन है, तपस्वी जीवन है, योगी जीवन है, तो उसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाएंगे तो उसकी सफलता मिलेगी। ओम शांति।